ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 10। ताव जात भवम योयम् ब्रह्म क्षत्र समेरिताम् शूद्य ध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रत दानिना। जब तक मैं विष्णु के मारने में व्यस्त हूँ, यात जाओ भुवम पृथ्वी लोक में यूयम तुम सब ब्रह्म क्षत्र ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का समेधिताम कर्मों ब्राह्मण संस्कृति तथा वैदिक शासन द्वारा संपन्न बने हुए शूद्रधवम विनष्ट कर दो। तप तपस्या करने वालों को यज्ञ यज्ञ स्वाध्याय वैदिक ज्ञान का अध्ययन व्रत अनुष्ठान संबंधी प्रतिज्ञाएं दानिना तथा दान देने वालों का। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की फिर पीछे दोहराइए। जब तक मैं भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूँ, तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ और जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है, ये लोग तपस्या यज्ञ वैदिक अध्ययन आनुषानिक व्रत तथा दान में लगे रहते हैं। ऐसे सारे लोगों को जाकर विनष्ट कर दो। तात्पर्य पढ़ता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिरण्यकश्यपु का मुख्य उद्देश्य देवताओं को विचलित करना था। उसने सर्वप्रथम भगवान विष्णु को मार डालने की योजना बनाई, जिससे विष्णु की मृत्यु होने पर सारे देवता स्वतः निर्बल होकर मर जाएंगे। उसकी दूसरी योजना पृथ्वी के वासियों को सताने की थी। पृथ्वीवासियों की शांति तथा समृद्धि ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा स्थिर रखी जाती थी। भगवद गीता में 4वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्षा। पृथ्वी के 3 गुणों तथा उनके नियत कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा की गई है। सभी लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के वासी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्यों द्वारा निवसित पृथ्वी लोक के प्रसंग में वे संस्तुत करते हैं। समाज 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया जाए। इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व ऐसा जाना जाता है कि पृथ्वी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा व्यवस्थित होती थी। ब्राह्मण का कर्तव्य है क्षम शांति दमह आत्मसंयम तितिक्षा सहिष्णुता सत्यम सच्चाई शौचम स्वच्छता और आर्जवम सरलता का समर्थन करें। तब तक क्षत्रिय राजाओं को सलाह दे कि देश या लोक पर किस तरह शासन किया जाए। ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करते हुए क्षत्रियों को चाहिए कि वे जनता को तपस्या यज्ञ स्वाध्याय तथा वैदिक अनुष्ठानों में दृढ़ बनने के लिए प्रवृत्त करें। उन्हें ब्राह्मणों सन्यासियों तथा मंदिरों को दान देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति का यह दैवी विधान है। लोगों की प्रवृत्ति यज्ञ संपन्न करने की ओर इसलिए होती है क्योंकि यदि यज्ञ नहीं किए जाते तो अपर्याप्त वर्षा होगी। यज्ञात भवति पर्जन्य, जिसे कृषि कर्म में बाधा उपस्थित होगी। पर्जन्याद अन्न संभवा, अतः ब्राह्मण संस्कृति का सूत्र पात्र करके क्षत्रिय सरकार को चाहिए कि लोगों को यज्ञ करने वेदों को पढ़ने और दान देने के प्रति प्रेरित करें। इस प्रकार लोगों की आवश्यकताएं सरलता से पूर्ण हो सकेंगी और समाज में उपद्रव नहीं होगा। इस संबंध में भगवान भगवद गीता के 3रे अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदर्थ ध्यान प्रतभ्यो भुक्ते स्तेन एवसा। सारे देवता जीवन की विविध आवश्यकताओं का भार संभालने के कारण यज्ञ संपन्न होने पर तुष्ट होकर मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, किंतु जो व्यक्ति इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोग करता है वह निश्चय ही चोर है। देवतागण वैध इच्छा पूर्ति अभी करता है जो विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, अतः नियत यज्ञ संपन्न करके उन्हें प्रसन्न किया जाना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न यज्ञ बताए गए हैं, किंतु वे सारे यज्ञ अंततः भगवान को ही समर्पित होते हैं। जो भगवान को नहीं समझ सकता उसके लिए संस्तुति की जाती है कि वे देवताओं के लिए यज्ञ करें। वेदों में संबंध व्यक्तियों के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार विभिन्न यज्ञों की संस्तुति की गई है। विभिन्न देवताओं की पूजा का आधार उनके गुणों के अनुसार है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को प्रकृति की विभत्स स्वरूपा देवी काली की पूजा करने की संस्तुति की जाती है। इस देवी के समक्ष पशुओं की बलि दी जाती है, किंतु सतोगुणियों के लिए विष्णु पूजा संस्तुत की जाती है। अंततः सारे यज्ञ क्रमशः दिव्य पद तक उठने के निमित्त किए जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मानव समाज की सारी आवश्यकताएं भगवान के अभिकर्ता देवताओं द्वारा पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के समस्त खाद्य पदार्थों के विषय में विचार करें, इनमें अन्न, फल, तरकारियां, दूध तथा चीनी सम्मिलित हैं। ये शाकाहारियों के लिए। इनमें मांसाहारियों के लिए भी खाद्य पदार्थ होते हैं यथा मांस, किंतु इनमें से किसी का भी निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं हो सकता। पुनः दूसरा उदाहरण ऊष्मा, प्रकाश, जल तथा वायु का है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। इनमें से किसी का भी निर्माण मानव समाज द्वारा नहीं हो सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर धाम हो सकता है, न चांदनी, न वर्षा, न मंद समीर, जिसके अभाव में कोई जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि अपने निर्माण कार्यों के लिए हमें अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातुएं, गंधक, पारा, मैंगनीज आदि, किंतु ये सब भगवान के अभिकर्ताओं द्वारा इस उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं कि हम अपने को स्वस्थ रखकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकें, जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात संसार में जीवन संघर्ष से मोक्ष है। ये जीवन लक्ष्य यज्ञों को संपन्न करके प्राप्त किया जाता है। यदि हम मनुष्य जीवन के प्रयोजन को भूल जाते हैं और मात्र इंद्र तृप्ति के लिए भगवान के अभिकर्ताओं की आपूर्ति ग्रहण करने लगते हैं तो संसार में अधिकाधिक फंसते जाते हैं, जो सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर बन जाते हैं। हमें प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। निपट भौतिकतावादी चोरों का कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, वे इंद्र तृप्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। उन्हें यज्ञों को संपन्न करने के लिए कोई ज्ञान भी नहीं होता, किंतु भगवान चैतन्य ने यज्ञ की सरलतम विधि का सूत्रपात किया है, जो संकीर्तन यज्ञ है। जैसे विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करता है संपन्न कर सकता है। हिरण्यकश्यपु ने पृथ्वी के निवासियों को मार डालने की योजना बनाई, जिससे यज्ञ बंद हो जाएं और सारे देवता विचलित होकर स्वतः मर जाएं। तब परमेश्वर भगवान विष्णु का स्वतः वध हो जाएगा। ये हिरण्यकश्यपु की आसरी योजनाएं थी और वह ऐसे कार्यों में दक्ष था। हरे कृष्ण। जब तक मैं भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूं, तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ और जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है, ये लोग तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन, अनुष्ठानिक व्रत तथा दान में लगे रहते हैं। ऐसे सारे लोगों को जाकर विनष्ट कर दो। तो उसने जो है राजनीति का खेल खेल रहा है। वो खेल क्या है? खेल है कि आपको समाज को विनष्ट कर देना है। मतलब समाज जो है, अगर आप गलत रास्ते पे चला दोगे या समाज का नाश हो जाएगा, तो टॉप लेवल तक ऑटोमेटिकली सब लोग डिस्टर्ब होते चले जाएंगे और अल्टीमेटली टॉप लेवल भी समाप्त हो जाएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो आज से कोई 150 साल पहले लॉर्ड मैकाले ने यही जो है स्थिति हिंदुस्तान में पैदा करी कि सबको अंग्रेजी सिखा दो। ऐसा दास बना दो अंग्रेजी का कि अपनी भाषा भूल ही जाए और आपस में उसके बाद जो राजनीति चली है आज तक डिवाइड एंड रूल वाली वो चलती आ रही है, इससे कि लोगों का विघटन हो रहा है। ये जो जड़ है ये आसुरी प्रवृत्ति की, ये उस काल से चली आ रही है। यह हिरण्यकश्यप क्या करना चाहता, किसको उपदेश दे रहा है कि तुम लोग जाओ, किससे कह रहा है? असुर कौन, खास तौर पे किन के लिए बात हो रही है, स्पेशली किन के लिए चर्चा हो रही है, किनको उसने जो है अपने साथ उसने जो है किसको मिला लिया है, हिरण्याक्ष के पुत्रों। यस यू डू इट। उसके साथ बाकी असुर जाएंगे और समाज में फैल जाएंगे, और समाज में फैलने के बाद क्या होगा, समाज में फैलने के बाद क्या है जो यहाँ पे स्पेशली जो है ब्रह्म क्षेत्रम समेधिताम शब्द इस्तेमाल किया है कि सबसे पहले तो ब्राह्मणों क्षत्रियों को अलग कर दो। फायदा क्या होगा कि जो क्षत्रिय हैं जिनका कार्य ब्राह्मणों की जो मंत्रणा होती है उसके अनुसार कार्य करना है वो कार्य करना बंद कर दें। एक एक जो कोऑर्डिनेशन है, एक जो कोऑपरेशन है, एक जो मेल जोल का तालमेल का भाव है उसको आप अभाव में कन्वर्ट करें कि आपस में उनका तालमेल ही ना रहे। क्योंकि यहां स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है। फल फूलने का मतलब क्या है, तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो उस प्रोग्रेस को समाप्त करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोनों का सेपरेशन कर दो, दोनों का अभिघटन कर दो। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो है मानव समाज के चार वर्णों की सृष्टि करी है, प्रकृति के तीन गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं किंतु तुम ये जान लो कि इस पर भी मैं अव्यय अकर्ता। अब चार समाज तो हम मनुष्यों की चर्चा करते हैं, अगर हम इसको एक वाइड एंगल से देखें, एक दूरगामी दृष्टि देखें, एक संकीर्णता में नहीं आए, तो क्या हम देखते हैं कि मनुष्यों के अलावा भी जो प्राणी हैं उनमें भी ये चार समाज है कि नहीं है, उनमें भी हमें फर्क दिखाई देता है। अगर आप पक्षियों में देखते हो तो एक तरफ कबूतर है सॉफ्ट, चील है, बाज है, कौवा है, देखने में तो सारे पक्षी हैं पर क्वालिटीज अलग अलग हैं कि नहीं है। हम वृक्षों में देखते हैं तो पीपल है, नीम है, इमली है, बबूल है, सभी के अंदर क्वालिटीज अलग अलग हैं। जब हम इसको देखेंगे चर्चा करेंगे तो इनको भी चार वर्णों में रचना करी गई है। तो भगवान ने सब प्राणियों के अंदर चार वर्णों की रचना करी और हर वर्ण के लिए जॉब्स स्पेसिफाई किए, क्वालिटीज गुण स्पेसिफाई हो गए कि आपके गुण ये होंगे। तो ब्राह्मणों के लिए क्या गुण था, ब्राह्मणों के लिए जो है इस समाज के अंदर जो मुख्य कार्य था, जो उनको कार्य करना है, जैसे हम समाज की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों के पर्सनल गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, जो समाज के प्रति जो है ब्राह्मणों का कर्तव्य था वो क्या था, क्या वो कर्तव्य का पालन आज हो रहा है? अगर आप शास्त्र उठा के देखें तो ब्राह्मण का कार्य क्या था, जब हम विप्र की चर्चा करते हैं तो छह कार्यों में वो निपुण होते थे, षट कर्मों निपुणो विशारदो, छह कार्यों में विपिन होते थे। वो छह कार्य क्या है, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। आज का जो ब्राह्मण है जिसको हम सेड टू बी ब्राह्मण कहते हैं, वो कहते हैं मैंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया है इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, वहां गुण और कर्म के अनुसार विभाग की बात नहीं हो रही है, हम संसारिक बात कर रहे हैं, सामाजिक बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मैंने क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है इसलिए मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने वैश्य परिवार में जन्म लिया है इसलिए मैं वैश्य हूँ, मैंने शूद्र परिवार में लिया है इसलिए मैं शूद्र हूँ। पर कलयुग में सभी शूद्र हैं, उससे उठते हैं ऊपर अपने गुणों के और कर्मों के अनुसार। परंतु ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज के अंदर कि समाज को सही दिशा दिखानी, समाज को ज्ञान देना, अर्थात राजा को भी सही दिशा दिखानी है, राजा को भी बताना है कि तुम्हें राज्य किस प्रकार से चलाना है, उसमें तुम्हारी पॉलिसीज क्या क्या रहेंगी। और यहां पर जो है हिरण्यकश्यप क्या करना चाहता है कि जो पॉलिसी मेकर हैं और जो पॉलिसी एग्जीक्यूटर हैं, क्षत्रिय पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने वाला है, ब्राह्मण जो है पॉलिसी को बनाने वाले हैं, वो दोनों को विभक्त कर देना चाहता है, दोनों को तोड़ देना चाहता है, जिससे समाज में अव्यवस्था फैल जाए। अव्यवस्था फैलेगी तो क्या होगा? यहां जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये पृथ्वी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा व्यवस्थित होती थी। व्यवस्था मतलब ठीक तरीके से उसका चलना जो है ब्राह्मणों और क्षत्रियों पे निर्भर करता था। वैश्य क्या कर रहा? वैश्य का गुण क्या है? गोपालन कर रहा है, गो रक्षा कर रहा है, कृषि उत्पादन कर रहा है, अर्थात इस तरह व्यापार के अंदर जो है संलग्न है, अलग है। परंतु उसके व्यापार के लिए भी जो पॉलिसीज बनानी है, उसको किस तरीके से कार्य करना है, वो कार्य और उस कार्य में सहायता राजा देगा, तो सारा का सारा कार्य जो है ब्राह्मणों पर निहित था। परंतु ब्राह्मणों क्षत्रियों को वो विभक्त करना चाहता कि समाज में अव्यवस्था हो जाए। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्राह्मण का कर्तव्य है क्षम दम तितिक्षा सत्यम और शौचम और आर्चमम, ये उसके गुण हैं। ये जो है ब्राह्मण के गुण हैं जिनके द्वारा वो पहचाना जाता है। और उसका कार्य क्या है? क्षत्रिय राजाओं को सलाह दे कि देश या लोक का किस तरह से शासन करना चाहिए, शासन करने का तरीका क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा कि शासन जो है किस प्रकार से किया जाए। अब ये किस प्रकार से शासन करना है, इसको अगर तोड़ दिया जाएगा, इसको अगर ब्रेक कर दिया जाएगा, तो समाज में अव्यवस्था हो जाएगी, जिसे क्योस कहते हैं। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से कार्य करेगा, तो अपनी मर्जी से कार्य करने का अर्थ क्या होता है? हर व्यक्ति राजा, आप भी राजा और मैं भी राजा, मतलब कोई जो है तालमेल नहीं रहेगा। तो हिरण्यकश्यपु ने बहुत ही बढ़िया पॉलिसी बना के सारी सृष्टि का विनाश करने की योजना बना ली है। जब समाज में अव्यवस्था हो जाएगी तो देवता कैसे इफेक्ट होंगे? वो तो पृथ्वी के ऊपर व्यवस्था करने की प्रयास का बिगनिंग कहां से कर रहा है? वो उसका आरंभ, उसकी बिगनिंग वो कहां से कर रहा है? देवलोक से तो नहीं कर रहा, बिगनिंग को कहां से करने का प्रयास कर रहा? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से साथ जो है देवताओं का क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप, उसका रिश्ता क्या है? गिव एंड टेक, मतलब आप उनको देते हैं और उनसे लेते हैं, तो क्या देते हैं आप उनको? यह प्रभुपाद जी लिखते हैं बड़ा स्पष्ट कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान भगवत गीता में ये संदेश दे रहे हैं। तो यहां पर जो है प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं पंच महायज्ञ की, कि सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता। तो पंच महायज्ञ क्या, कौन से यज्ञ हैं, कौन से यज्ञ हैं 5? तो इसमें जो है सबसे पहला है आपका भूत यज्ञ। वो भूत नहीं, वो जो भूतों की चर्चा होती है सामाजिक समाज में, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। यहां भूत का अर्थ है प्राणी। भूत यज्ञ मीन्स अब प्राणियों की सेवा करते हैं और मुख्य रूप से आहार के द्वारा, आहार के द्वारा। मतलब जो प्रभुपाद ने एक नियम बनाया फूड फॉर लाइफ, वो क्या है कि किसी भी मंदिर के 10 मील के घेरे में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, उसके लिए फूड फॉर लाइफ करिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को फूड फॉर लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। कितने लोग करते हैं, हम उसकी वैल्यू ही नहीं समझते, हम उसका अर्थ नहीं समझते कि प्रभुपाद अगर एक बात कह रहे हैं तो उसके पीछे उसकी वैल्यू क्या है, वो क्यों कही जा रही है। बिकॉज दैट इज ए पार्ट ऑफ दिस भूत यज्ञ की प्राणियों की सेवा कर रहे हैं आहार के द्वारा, ताकि कोई भूखा न रहे आसपास। कि और 10 किलोमीटर 10 मील क्यों के ना, कि वहां तक जाना और आना आसान होगा, वो अगला एरिया दूसरा मंदिर संभालेगा। इतने मंदिर होने चाहिए, मंदिर हो, प्रीचिंग सेंटर हो, मतलब जहां पर प्रचार कार्य हो रहा है, मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म वहां होता हो, और उनके अपने अपने एरियाज हैं। 10 किलोमीटर 10 मील मेरे पास है, अगला 10 मील तुम्हारे पास है, फिर तीसरे के पास है, फिर चौथे के पास है। हम जब अभी मायापुर गए थे तो मायापुर में जो है जो परिक्रमा समाप्त हुई तो उसके बाद शांतिपुर में एक बड़ा फेस्टिवल था। तो क्या फेस्टिवल था वो, क्या होता है उस दिन वहां पर, क्या जरूरत है भैया वहां बांटने की जाके। एक नियम बनाया कि हर प्राणी की आहार से सेवा करनी, दिखाया गया यज्ञ करके कि किस तरीके, कितने लोग आते वहां, हजारों लोग। उस दिन वहां पर जो है गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं थी, क्यों प्रभु जी, एम आई राइट। मतलब आई वॉज सरप्राइज, मेरे साथ जो लोग थे बड़े हैरान हो रहे थे। किस बात पे हैरानी आ रही है कि खिचड़ी बांटने की बाल्टी को लेकर झगड़ा, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि खिचड़ी बांटने की बाल्टी कौन लेगा। खाने वालों की तो बात छोड़ ही दो, वो तो अलग है। बिग बिग क्यू, क्यू किस लिए है कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अर्थात आप जो है जो उस भूत यज्ञ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ऐसा यज्ञ क्या हम अपने यहां करते हैं? कितने लोग हैं जो कहते हैं खिचड़ी बांटने की कड़छी मैं उठाऊंगा। सवेरे खिचड़ी बटती है ना, शाम को बटती है, किसी एक को बिठा दिया बांट बूट के चल कर कर आगे चला जाएगा। हम लोग जो है जो हमें प्रभुपाद ने नियम दिए हैं, जो उन्होंने सिस्टम बताए हैं, उनको कई बार क्या है सुपरफिशियली फॉलो करते हैं, उसकी डेप्थ में नहीं जाते। अगर डेप्थ में जाएंगे तो हमारा नजरिया बदल जाएगा। जो प्रभुपाद ने कहा है सामान्य व्यक्तियों को चाहिए पंच महायज्ञ का पालन करें, तो उस पंच महायज्ञ के अंदर पहला है भूत यज्ञ, जिसमें कि प्राणियों की सेवा करनी। उसके बाद एक है नर यज्ञ। नर यज्ञ क्या है, इसको मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं, नर यज्ञ भी कहते हैं। नर यज्ञ है अतिथि की सेवा करने। अतिथि किसे कहते हैं, जो बिना तिथि के आए, जो अपॉइंटमेंट फिक्स करके आ रहा है, प्रभु जी आज आपसे मिलना है, आप आज आपसे मुलाकात करनी है, तो उसने अपॉइंटमेंट फिक्स करी है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जो बिना अपॉइंटमेंट लिए, बिना किसी मतलब डेट फिक्स किए, बिना आपसे परमिशन लिए, बिना आपसे चर्चा किए, बिना आपसे बातचीत किए उपस्थित हो गया आपके यहाँ, अतिथि है। तो आप जो है जब अतिथि के लिए यज्ञ करते, उसको मतलब उसकी सेवा करते हैं। अब उसकी सेवा करना क्या है, हम लोगों के लिए अतिथि अगर आ जाता है तो उसकी सेवा करना क्या है, व्हाट शुड वी डू फॉर हिम, हमें अतिथि के साथ क्या करना चाहिए। खुश होके प्रेम से हरे कृष्णा कहते हुए उससे मिलना चाहिए, घर में बिठाना चाहिए, कृष्ण प्रसाद देना चाहिए, प्रसादम ऑफर करना चाहिए, उसके बाद उससे कृष्ण चर्चा करनी चाहिए, भगवान की चर्चा करनी चाहिए। जब आप जो है कृष्ण भावनामृत में उसको लाने का, अगर कृष्ण भावनामृत में ऑलरेडी है तो कृष्ण चर्चा और एडवांस्ड होगी, अगर वो नियोफाइट है तो कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो आप उसको जो है सांसारिक बातों के अंदर से निकाल के कृष्ण भावनामृत की बातों में ले आए, कुछ ना कुछ चर्चा आपकी अवश्य हो। पारिवारिक बातें होंगी, हम ये नहीं कह रहे पारिवारिक बातें ना करी जाए, क्योंकि घर में आया कोई पता नहीं किस काम से आया, कोई पर्पस लेके आया, सांसारिक पर्पस लेके आया, तो सांसारिक पर्पस तो आप उसका करेंगे ही करेंगे, परंतु साथ साथ जो है आप उसके साथ कृष्ण भावनामृत की चर्चा भी करेंगे, तब वो यज्ञ कहलाएगा। सांसारिक बातों से यज्ञ नहीं होगा। आपको उसको जो है अतिथि होते हुए भी, आपके घर में गेस्ट आ गया है तो आपने उसके साथ जो है कृष्ण भावनामृत की चर्चा अवश्य करनी। अब वो आपके घर से जा रहा है तो क्या करेंगे, जाइए, कोई ना कोई कृष्ण भावनामृत से अटैच्ड वस्तु उसे अवश्य गिफ्ट करेंगे ताकि आपको याद रखे। कोई छवि है, कोई कैलेंडर है, कोई पोस्टर है, कोई भगवत गीता है, कोई छोटी बुक है प्रभुपाद की, ताकि जब आप उसको देंगे तो उसके एक बड़ा इंप्रेशन लेके जाएगा कि मेरा सही ढंग से स्वागत हुआ। अब इसके बाद आता है तीसरा, तीसरा है पितृ तर्पण, मतलब आप जो है पितरों के प्रति भी यज्ञ करते हैं। अब पितरों के प्रति यज्ञ क्या है, उसमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड, कुछ कार्य होना चाहिए ना कि पितृ तर्पण कैसे होगा। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो भौतिक संसार में स्मार्त ब्राह्मण कहते हैं, श्राद्ध आया तो श्राद्ध कर दिया जी, चलो काम खत्म, फिनिश्ड। मतलब पितरों को आपने 365 दिन में से एक दिन याद किया और 364 दिन उन्हें भुला दिया, अब आपकी आवश्यकता नहीं, हम आपको एक दिन याद करेंगे, एक दिन श्राद्ध करेंगे, उस दिन आपको हम जो करना होगा पंडित जी को बुलाएंगे, वो आएगा कुछ हवन हवन कर करा के, अपना ये कर करा के चला जाएगा, उसके बाद हमारा कर्तव्य समाप्त, हमने पितृ यज्ञ कर दिया। परंतु शास्त्र के अनुसार अगर हम ये कहें कि आपको पितृ यज्ञ रोज करना है, रोज डेली, तो क्या करोगे आप, फंस गए, ये तो भैया बड़ा मुश्किल काम है। रोज हवन करें क्या, रोज ब्राह्मण को बुलाएं हैं, रोज सारी प्रोसेस फॉलो करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो आप पितृ तर्पण अर्थात पितृ के प्रति यज्ञ करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है कि आप जो है रोज उनको स्मरण करके उनको कृष्ण प्रसाद ऑफर कर दीजिए, जो आप रोज भगवान को भोग लगाते लगाते, तो डेली आपने उनको स्मरण कर लिया, डेली भूला नहीं आपने, भुलाया नहीं आपने, यू नॉट फॉरगॉटन देम, और कुछ स्पेशल काम भी नहीं किया। कई बार जो है हम कहते हैं ठीक है हम डायरेक्टली उनको ऑफर ना करके मानसिक रूप से ऑफर कर देते हैं, कृष्ण प्रसाद मानसिक रूप से ऑफर कर देते हैं, परंतु कृष्ण प्रसाद ऑफर करना ही उनके लिए जो है डेली के लिए पितृ यज्ञ हो जाएगा। डेली आप पितृ तर्पण कर रहे हैं, डेली पंच महायज्ञ को फॉलो कर रहे हैं विदाउट फेल, 365 के 365 दिन हो रहा है और कुछ खर्चा नहीं है, भगवान को भोग लगाया है, जब भोग निकाल के लाए हैं तो ऑफर कर दे दिए, तो मानसिक रूप से उनको ऑफर कर दीजिएगा। अब चौथा आता है देव यज्ञ, जो यहां चर्चा हो रही है कि देवताओं के प्रति किया गया आपका जो कार्य है, जो यज्ञ है, वो देव यज्ञ कहलाता है। कि अगर आप उनके प्रति यज्ञ करते हैं, पर देयर इज ए क्लियर फॉर्मेट, एक बहुत ही स्पष्ट बात है जो यहां भगवान आगे जाके बताते हैं कि आपको देवताओं के लिए जो यज्ञ करना है उसके अंदर देवताओं को प्रसन्न करना है, परंतु प्रसन्न करने के लिए भी आपके पास दो फॉर्मेट है, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम के अंदर आप जो है उनको प्रसन्न कर रहे हैं और कुछ कामना कर रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो दैट इज नॉट द सिस्टम, वो गलत है, वो नहीं करना। आप देवताओं को प्रणाम करेंगे, उनको आदर देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, पूरी इज्जत करेंगे, परंतु उनसे कुछ कामना नहीं करेंगे, डिजायर नहीं है। अगर डिजायर करेंगे तो उनसे एक ही डिजायर करें, उनके प्रति आपके पास एक ही डिजायर होनी चाहिए कि आप मुझे इस प्रकार की शक्ति दीजिए, इस प्रकार का आशीर्वाद दीजिए, ऐसी ब्लेसिंग दीजिए कि मैं कृष्ण की भक्ति में तेजी से प्रोग्रेस कर सकूं, मतलब कृष्ण भावनामृत में मेरी तरक्की जो है वो एक बड़े फास्ट लेवल पे, अच्छे लेवल पे हो, तुरंत हो जाए, क्विकली हो जाए, उनकी भक्ति में मेरा जो है क्या लेवल आ जाए, सरेंडर का, शरणागति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। उनका हमसे तो उच्च कोटि के प्राणी है ना, असंख्य पुण्य कर्म किए तभी तो देवलोक की प्राप्ति हुई, ऐसे थोड़ा हो जाएगी। जब देवलोक की प्राप्ति हो रही है तो वो भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, जहां प्रभुपाद जी साहब लिख रहे हैं कि उनके पास जो कार्य है वो भगवान द्वारा अलॉटेड है, ये कार्य तुम्हें करना। आप अपने घर के अंदर रहकर बहुत सारे कार्य करते हैं, घरेलू कार्य भी करते हैं, ऑफिस का कार्य भी करते हैं, ऑफिस के बाहर भी कार्य करते हैं, मतलब आप दो तीन तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, 6 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे, आप एक व्यक्ति हो गए बहुत सारे कार्य करते हैं, क्योंकि अभी आप अपनी मर्जी के स्वामी हैं। पर देवताओं के लिए क्या है, इंद्र जो है वरुण का कार्य कर सकता, अग्निदेव जो है इंद्र का कार्य कर सकते हैं। अग्निदेव जो है, महाभारत में कथा आती है कि अग्निदेव को जब अजीर्ण हो गया है, लगातार हवन में आहुतियां डल रही हैं, घी डल रहा है, सब कुछ डल रहा है, तो वो जो है औषधियां चाहते हैं उस अजीर्ण को ठीक करने के लिए, तो खांडव वन को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इंद्र जो है वर्षा का स्वामी है, वो कह रहा हो वन जल रहा है तो बारिश कर देता। तो क्या दोनों एक दूसरे के कार्य को कर सकते हैं? वो कह भी नहीं, ये पानी का बरसात ही मेरे कम्बे है, मैं रोक लूंगा, इंद्र अग्निदेव में है, पानी भी मेरे कंट्रोल में है, इंद्र के कंट्रोल में नहीं है, मैं कर लूंगा। हर एक के पास इंडिविजुअल जॉब्स हैं और इंडिविजुअल जॉब इंडिविजुअली कर सकता है, एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकते। पर आप अपने घर में स्वामी हैं तो एक दूसरे का कार्य भी कर लेते हैं, दिस इज ए वन मेजर डिफरेंस। तो देवताओं के लिए आपको कार्य करना है तो देवताओं के लिए जो भी आप यज्ञ करेंगे वो यज्ञ बेसिकली आपका आदर मान सम्मान प्रणाम सब कुछ होगा, परंतु उसमें कामना नहीं होनी चाहिए। ऑफर करिए पर कामना मत करिए। परंतु अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि जब हम सपोज कई बार घर में जो है यज्ञ के लिए किसी को बुला लेते हैं, तो यज्ञ के लिए जो पूर्णाहुति डालता है वो नवग्रह पूजन करेगा, सारे काम करेगा, वो आपके लिए सब कुछ करेगा, पर पूर्णाहुति किसके लिए होगी? वो किसी देवता के लिए नहीं होगी, विष्णु के लिए होगी। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर आप संकीर्तन यज्ञ कर लेते हो तो आपको किसी और यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, डोंट नीड एनीथिंग एल्स। पर अब आती है चर्चा पांचवें यज्ञ की, वो है आपका ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब है यहां पर ज्ञान, नॉलेज, स्वाध्याय, जिसकी चर्चा प्रभुपाद जी यहां कर रहे हैं कि आपको ब्रह्म यज्ञ करना है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना है। किस लिए? वाई? अरे मैं तो बड़ा यज्ञ करता हूं, मैंने एमए पीएचडी कर लिया, एमफिल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ब्रह्म यज्ञ? नो, ब्रह्म यज्ञ का मतलब है ब्रह्म की सेवा करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म के चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए मेरे को ज्ञान चाहिए, अर्थात मुझे नॉलेज चाहिए, उसके लिए मुझे वो ज्ञान प्राप्त करना है। आई हैव टू अचीव दैट नॉलेज। तो उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए मुझे एक गुरु की आवश्यकता है, और गुरु की आवश्यकता की पूर्ति होगी जब मैं भगवत गीता को ध्यान से पढ़ूंगा और मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियों विदु, अर्थात मुझे परंपरा से गुरु चाहिए जो भगवान की परंपरा में आता हो। अपनी मर्जी का गुरु नहीं, सेट टू बी गुरु नहीं कि मैं गुरु हूं तो मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा। नो, हो सकता है कि वो मुझे कुछ गलत सलत ज्ञान दे दे और मैं फंस जाऊं, इसी भौतिक संसार में घूमता रह जाऊं मैं। तो व्हाट यू नीड इज, स्वाध्याय यज्ञ के अंदर एक पार्ट है कि आपको अच्छा शिष्य बनना है, दूसरा पार्ट है आपको अच्छा गुरु प्राप्त करना है। गुरु कौन होना चाहिए? प्रामाणिक परंपरा के द्वारा। तो स्वाध्याय यज्ञ करना है तो पंच महायज्ञ हो गए जो आपको करने हैं। इन पंच महायज्ञों की जब आप पूर्ति करते हो तब आप आगे बढ़ते हो, मीन्स यू प्रोग्रेस। इसी में अटक के नहीं रह जाना कि मैंने ये कर लिया, चलो जी इति हो गई, मेरा काम समाप्त हो गया, नो इट इज ओवर। नो, इसको करने के बाद इसका अर्थ यह है कि दिस इज द बिगनिंग, ये आरंभ है, ये आरंभ है। तो भगवान कहते हैं वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा उपस्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ में जीवित रहता, उसी में अटक के नहीं रह जाता कि ये कर लिया बस मेरा काम हो गया, इससे ज्यादा मुझे नहीं। दैट इज द बिगनिंग, वो आरंभ है, क्योंकि अल्टीमेट आनंद तो आत्मा में आना है। तो भगवान लिखते हैं किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करनीय नहीं रहता। अर्थात पंच महायज्ञ जो है बिगिनिंग हो सकती है परंतु अंत नहीं। प्रोग्रेस आपको करना है अल्टीमेटली, कहां तक कि आपको कृष्ण भावनामृत के अंदर 100% मार्क्स ले रहे हैं, मतलब पूर्णतया 100% कृष्ण भावना भावित होना है। तो अगर हम कहें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो 100वां नंबर किस चीज का आता है? हाईएस्ट। अब मैंने 100वां नंबर ले लिया है, नाउ आई हैव कम टू दी फाइनल स्टेज। अभी तक मैं 99 में था, 98 में था, 97 में था, 96 में था, 95 में था, आज मेरे 100 नंबर पूरे हुए हैं। तो 100th मार्क जो है वो आ जाता है आपका शरणागति, कि अब आपने भगवान की शरण ग्रहण कर ली। शरण का मतलब क्या है? शरण का मतलब क्या है? अभी तक फील क्या था? ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैंने ऐसा कर दिया है, मेरे में देखो कितनी कितनी स्मार्टनेस है, कितनी इंटेलिजेंस है, कितना ये है, कितना वो है, मतलब मैं हो रही है कि सब काम मैंने किए। फिर आती है, देखा नुकसान हुआ तो भगवान कितने निर्दयी है, मेरा कोई ख्याल ही नहीं करते हैं, मेरा सत्यानाश कर दिया इन्होंने, मैंने आज से मंदिर नहीं जाना, मैंने आज से सेवा नहीं कर, अच्छा किया, देखा मैंने कितना अच्छा कर दिया, तो भगवान का नाम नहीं है, तब भगवान को याद नहीं किया जा रहा कि भगवान द्वारा हो रहा। शरणागति का मतलब क्या है? शरण्य, कि मैं अब आपकी गोदी में हूं, आप जैसे मर्जी मेरे साथ व्यवहार कीजिए, चॉइस लाइज विद यू। अर्जुन यही कहता है ना, कार्पण्य दोषो अपवत स्वभावा शामी त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे स्या निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि कृपणता का दोष मेरे स्वभाव में आ गया है, मैं धर्म को भूल गया हूं, आप कह रहे हो युद्ध करना अच्छाई है, मैं कह रहा हूं युद्ध करना बुराई है। आप कह रहे हो उठो और युद्ध करो, मैं समझता हूं युद्ध में पाप में कार्य हो जाएगा, मैं नहीं करना चाहता, अपनी बुद्धि लगा रहा, बाकी काम बुद्धि नहीं लगाता। कार में बैठते हो तो किसकी, अगर ड्राइवर बैठा है बस के अंदर तो किसकी बुद्धि से बस चल रही है, आपकी कि ड्राइवर की? ट्रेन जो है उसमें बैठे हैं, ड्राइवर ट्रेन चला रहा है तो किसकी बुद्धि से ट्रेन चल रही है, आपकी बुद्धि से चल रही है कि ड्राइवर की बुद्धि से चल रही है? तो जब भगवान सारथी बन गए हैं तो किसकी बुद्धि से कार्य करना चाहिए, अपनी बुद्धि से कि भगवान की बुद्धि से? किसकी बुद्धि से कार्य करना चाहिए? नहीं, मेरी बुद्धि क्या है, पाप कर्म हो जाए। तो फिर कहता है अच्छा अच्छा, मैं तो है सखा हूं, मैं तो संबंधी भी हूं, चलो मैं जो शिष्यता ग्रहण करता हूं, कि जो है गुरु जो है शिष्य को पूर्ण ज्ञान देता है। अब फिर मन में बात आती है कि ज्ञान तो मिलेगा पर करेगा कौन? ज्ञान मिल गया, करना तो फिर मुझे ही है। ज्ञान मिल गया तो कौन करेगा, हू टू परफॉर्म एक्शन? करना तो मुझे ही है ना। तो कहता मैं क्यों करूं, आप करो तो शरण ग्रहण कर लेता है। शरण का मतलब यह है अब कार्य तो भगवान को करना, उसको नहीं करना, हमें आपके शरणागत हो। तो शरणागत हुआ कहां? फिर बात आ रही दिमाग में, अच्छाई क्या है और बुराई क्या? फिर कहता है गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो हम क्या करते हैं, कहते तो हैं हमने मन भगवान को दे दिया, कहते तो हैं हमने भगवान आपकी शरण ले ली, पर 100वां नंबर हमसे कभी होता ही नहीं, वहां आगे फेल हो जाते हैं। 100वां नंबर हम कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते, वहां जो है टोटली फेल हो जाते हैं कि हम जो है भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, कि अपना सब कुछ भगवान को समर्पित नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते, ये नहीं चाहते कि भगवान जैसे आप चलाओगे वैसे मैं चलूंगा, मेरा अपना वजूद, मेरी अपनी आइडेंटिटी, अपना अहम, अपना अहंकार सब समाप्त हो गया, वो कभी होता ही नहीं, हम वहीं के वहीं अटके रहते हैं। पांच दस मिनट के लिए चर्चा श्री बलदेव विद्याभूषण पे। श्री बलदेव विद्याभूषण का हमारे कृष्ण भावनामृत के जीवन में क्या स्थान है, व्हाट इज द पोजीशन? बड़ा स्पष्ट है कि प्रभुपाद जी ने जो है समर्पण किया है भगवद गीता को, वेदांत दर्शन पर गोविंद भाष्य के प्रणेता श्री बलदेव विद्याभूषण को समर्पित है। और बहुत सारे जो इसके अंदर परपट्स हैं वो भूषण गीता से आपको मैच करते हुए मिलेंगे, जो बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री है भगवद गीता। तो यहाँ जो है शॉर्ट में पढ़ते हैं, श्री बलदेव विद्याभूषण श्री गोविंद दास उड़ीसा में रेमुना कनेक्टेड 1600 की शताब्दी में प्रकट हुए थे। अपनी युवावस्था में उन्होंने संस्कृत व्याकरण काव्य एवं न्याय शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। शंकर एवं माध्वाचार्य के भाष्यों का विवेचन करने के उपरांत उन्होंने श्रीपाद माध्वाचार्य की तत्ववादी शिष्य परंपरा में दीक्षा ग्रहण करी और बलदेव विद्याभूषण एक दिग्विजय पंडित बन गए तथा तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। जहां भी वे गए उन्होंने स्थानीय ऋषियों विद्वानों तथा सन्यासियों को पराजित कर दिया, शास्त्रार्थ में एक्सपर्ट। जगन्नाथपुरी में उन्होंने श्री राधा दामोदर गोस्वामी से श्री कृष्ण चैतन्य के अत्युत्तम दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी तथा एक गौड़ीय वैष्णव के रूप में परिणित होने के पश्चात दीक्षा ग्रहण करी। वृंदावन में उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अधीन श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया तथा श्री राधा श्याम सुंदर की आराधना करी। सन 1706 में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्हें महाप्रभु के आंदोलन की प्रतिष्ठा बनाए हेतु कलता राजस्थान में जयपुर के निकट भेजा। कितने लोग हैं कलता देवी के मंदिर? वहां पर लोगों को ये जो लाइन लिखी है ना इसका ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ देवी के मूड में वहां चले जाते हैं, गलता देवी के मंदिर में आ गए। गलता देवी के मंदिर में टीटी किसकी है?
सूर्य देव की।
और जयपुर में ही एक टेम्पल है, शायद गलता देवी में है, जहां पर कि भगवान की डीटी में आधे राम है और आधे कृष्ण है, इसी में है ना नीचे। बहुत सुंदर छवि है, अर्थ रूप जो है राम जी का है और अर्थ रूप जो है भगवान कृष्ण का है। स्थानीय रामानंदी श्री वैष्णवों का एक वर्ग दावा कर रहे थे कि बंगाली वैष्णवों को गोविंद जी की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उनके पास वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य नहीं था। भगवान गोविंद देव जी ने बलदेव विद्याभूषण के समुद्र गोविंद भाष्य वेदांत पर एक वैष्णव भाष्य स्वयं स्पष्टतया प्रकट किया। उसका उपयोग करते हुए बलदेव ने गौड़िया वैष्णववाद को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित किया। उन्होंने जयपुर में बंगाली वैष्णवों को गोविंद देव जी की सेवा में पुनः पदस्थ किया और गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र पर एकमात्र भक्ति टीका है, बादरायन सूत्र भी कहते हैं इसे, गोविंद भाष्य भी कहते हैं। इसमें जो है जो भक्तिमय टीका है वो यही है। और दूसरी टीका कौन सी है, उसका नाम क्या है, सारिस्का ऐसे ही कुछ नाम है। उसमें जो है वो मायावादी टीका है, दैट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ टीका। और भक्तिमय टीका जो है केवल एक यही है। श्री बलदेव विद्याभूषण एक निष्किंचन परम भागवत थे। उनके 24 से अधिक ग्रंथों एवं टीकाओं ने कृष्ण भावनामृत के उत्कृष्ट दर्शन और षट गोस्वामियों की गूढ़ रचनाओं को समझने में सहस्त्रों वैष्णवों की सहायता की है। चूंकि वे मिथ्याभिमान से मुक्त थे, उन्होंने अपने जन्म माता पिता कुल एवं निजी जीवन के विषय में कभी नहीं लिखा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कृत नवदीप धाम महात्म के अनुसार चैतन्य लीवा में बलदेव विद्याभूषण श्री सातवां भट्टाचार्य के दामाद श्री गोपीनाथ आचार्य हैं। व्रज में वे रत्नावली देवी के नामक श्री राधा की नित्यदारी में नित्य दासी के रूप में सेवा करते हैं। श्री गंगा माता गोस्वामिनी बाल्यावस्था से ही बंगाल के राजा नरेश नारायण की पुत्री राजकुमारी वश शची देवी में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति होने लगी थी। श्री कृष्ण के प्रति अपनी विशुद्ध आसक्ति के कारण उन्हें विवाह करना भी अस्वीकार कर दिया। अपने पिता के निधन के उपरांत उन्होंने राज्य का शासन किया, किंतु एक प्रमाणिक गुरु की खोज में उन्होंने शीघ्र ही इसका त्याग कर दिया, राज्य छोड़ दिया। उन्होंने राजकुमारी शची देवी ने वृंदावन के एक अग्रवर्ती गुरु श्री हरिदास पंडित से भेंट की और श्री गोविंद जी के प्रति निष्ठावान भजन प्रारंभ कर दिया। यद्यपि वे स्वल्पाहार के कारण क्षीणकाय हो गई, वे सदा कालिंदी के सिकतिल तीर पर सोती तथा गोविंद जी के मंदिर को स्वच्छ करने हेतु भोर होने के पूर्व ही उठ जाती थी। प्रतिदिन वे भागवत कथा का श्रवण करती, गोविंद जी की आरती के दर्शन करती तथा राधा श्याम सुंदर के लीला स्थलों जैसे वंशीवट सेवा कुंज निधिवन राजस्थल इत्यादि की प्रदक्षिणा करती। ये गोविंद जी का मंदिर कहाँ है, तो वृंदावन की बात हो रही, जयपुर की बात थोड़ा हो रही है, वृंदावन की बात हो रही है, जयपुर की बात थोड़ा हो रही है, तो किस मंदिर की चर्चा हो रही है, पढ़ तो हम रहे हैं, कौन सा अटाला चुंगी से जब हम जाते हैं सीधी रोड वृंदावन के अंदर, तो कॉर्नर में जाके एंड जो उसका है टी जॉइंट आता है जहां पे कि रंगनाथ जी का मंदिर है, उसके पहले जो है लेफ्ट हैंड में चढ़ाई ऊपर चढ़ती है जहां पे लाल पत्थर का बना हुआ महल नुमा महल की तरह राजा जयपुर का बनवाया हुआ बहुत बड़ा गोविंद देव जी का मंदिर है, जहां से डीटीज को जयपुर में शिफ्ट किया गया, उस मंदिर की चर्चा हो रही है। श्री हरिदास पंडित से प्रोत्साहन प्राप्त करके शची देवी ने अपना मिथ्या अहंकार का पूर्णतया त्याग कर दिया। चिथड़े पहन लिए ब्रज में घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगी। ब्रजवासी उनका कठोर त्याग देखकर चकित रह गए। अपने गुरु के सुझाव पर वे हरिदास की प्रिय शिष्या श्री लक्ष्मी प्रिया देवी दासी का संग करने हेतु राधा कुंड चली गई। ठाकुर हरिदास के उत्तम आदर्श का पालन करते हुए लक्ष्मी प्रिया देवी प्रतिदिन श्री कृष्ण के 300,000 नाम भाव 192 माला का जप करती थी। ये दोनों स्त्रियां प्रतिदिन गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करती और श्री कृष्ण की पूजा करती। अपने गुरु के आदेश पर शची देवी जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर ली गई। सार्वभौम भट्टाचार्य एवं भगवान गौर सुंदर के अधिकांश नित्य परिकर पहले ही गोलोक वृंदावन लौट चुके थे। शशि देवी ने सार्वभौम के घर का पुनरुद्धार किया। जयपुर के एक ब्राह्मण द्वारा उन्हें प्रदत्त श्री श्याम राय के अर्च विग्रह की उत्तम विधि से पूजा स्थापित कर वे प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पर प्रवचन देती। उनके प्रवचन लोकप्रिय हो गए। उन्होंने मीलों दूर उपस्थित उत्सुक श्रोताओं को भी आकृष्ट कर लिया। अनेक ब्राह्मणों तथा राजा मुकुंद देव सहित बहुत से लोगों ने शची देवी से दीक्षा ग्रहण करी। गंगा सागर मेले के दिन शची देवी के मन में, जो जगन्नाथपुरी में वास कर रही थी, गंगा स्नान करने की इच्छा जागृत हुई। उस रात्रि भगवान जगन्नाथ के पद कमलों से गंगा प्रवाहित हुई और शची देवी के आश्रम में पहुंची। गंगा देवी के जल में प्रवेश करके शची देवी बहती हुई मंदिर के भीतर जगन्नाथ स्वामी के पदारविंदों तक जा पहुंची। अगले दिन प्रातःकाल द्वार खोलने पर पुजारी उन्हें मंदिर के भीतर पाकर विस्मित रह गए। उन्हें चोर समझकर उन्होंने शची देवी को तुरंत जेल भिजवा दिया। इस त्रुटि को देखकर भगवान जगन्नाथ एक ही समय पूरी नरेश परम पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि शची देवी दासी को मुक्त कर दो और उनसे दीक्षा ग्रहण करो। उस दिन के उपरांत वे गंगा माता गोस्वामिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हरे कृष्णा। श्रील भगवान की।